लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे विश्व के समस्त ख्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे बिला शर्त प्रेम का वरण कर सच्चे प्रेम का अनुभव करें और अपने दैनिक जीवन के हर स्तर पर पवित्रता में अग्रसर होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पुरोहिताई पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान संत पापा फ्रांसिस का पुरोहितों को किया गया संबोधन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के 50 वर्षीय पुरोहिताई जीवन के अनुभव का जिक्र कर रहे हैं, जिसे उन्होंने इस वर्ष 17 फरवरी को रोम में हुई पुरोहिताई पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान अपने पुरोहित भाइयों के संग साझा किया था। अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए संत पापा फ्रांसिस अपने पुरोहित भाइयों से कहते हैं,
Tuttavia in questo senso non si può permettere che si creda che l'amore fraterno sia un'utopia, tanto meno un luogo comune per suscitare bei sentimenti o parole di circostanze o un discorso tranquillizzante.
हम भ्रातृत्व प्रेम को आदर्श के रूप में न देखें, न ही एक तुच्छ वाक्यांश स्वरूप जो हममें सुखद भावनाओं को जागृत करती हो या असहमतियों को शांत कर देती हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हममें से हर कोई इस बात से वाकिफ है कि एक समुदाय में या पुरोहितों के निवासालय में रहना कितना कठिन होता है। एक बार एक संत ने कहा कि सामुदायिक जीवन उसके लिए त्याग के समान था। हमारे लिए उनके साथ जीवन व्यतीत करना कितना कठिन होता है, जिन्हें हम अपने भाई बहनों के रूप में देखने हेतु आमंत्रित किए गए हैं। भ्रातृत्व में प्रेम, बशर्ते कि हम इसे चीनी समान मीठा न बनाएं, इसे फिर से परिभाषित न करें या इसके महत्व को कम न करें। यह महान भविष्यवाणी है जिसे आज के फेंके जाने वाले समाज में हम जीवन का अंग बनाने हेतु बुलाए जाते हैं। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि मैं भ्रातृत्व प्रेम को एक आत्मा की व्यायामशाला स्वरूप देखता हूँ, जहाँ हम रोज दिन अपने विकास को देखते और अपने आध्यात्मिक जीवन के तापमान की जांच करते हैं। आज भ्रातृत्व की भविष्यवाणी अपने में धूमिल नहीं हुई है, लेकिन इसे संदेश वाहकों की जरूरत है, नर और नारियों की जो अपनी कमजोरियों और चुनौतियों से वाकिफ हैं, जो अपने को ईश वचनों के द्वारा स्पर्श होने देते, जो ईश वचनों से प्रभावित होते हैं। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। भ्रातृत्व प्रेम पुरोहितों को एक छोटे समूह में सीमित नहीं रखता है, लेकिन यह अपने को करुणामय प्रेरिताई में अभिव्यक्त करता है। यह हमें ठोस प्रेरितिक कार्य को प्रेरित करता है। हम कह सकते हैं कि हम प्रेम करने के योग्य केवल तब होते हैं जब हम संत पौलुस के निर्देशानुसार अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। केवल वही जो प्रेम करने की चाह रखता है अपने में सुरक्षित रहता है। वे लोग जो काइन की बीमारी से ग्रसित हैं, इस बात से विश्वस्त हैं कि वे दूसरों को प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं में प्रेम का अभाव पाते हैं। वे अपने को दूसरों के द्वारा अप्रशंसनीय पाते, यह उन्हें सदैव चिंता से भर देता और वे सहज अनुभव नहीं करने के कारण भटकते रहते हैं। यही वह विशेष कारण है जिसके द्वारा वे और अधिक बुराई के शिकार होते हैं, जहां वे अपने को और दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। पुरोहितों के बीच इस कारण प्रेम का होना जरूरी है, जिससे वे अपने और दूसरों की रक्षा पारंपरिक ढंग से कर सकें।
Mi spingo a dire che lì dove funziona la fraternità sacerdotale, la vicinanza fra i preti, Ci sono legami di vera amicizia. Lì è anche possibile vivere con più serenità anche la scelta celibataria.
संत पापा इस बात पर भी जोर देते हैं कि जब पुरोहिताई भ्रातृत्व उनके बीच निकटता और मित्रता का विकास होता है तो वे अपने समर्पित ब्रह्मचर्य के जीवन में अधिक शांति का अनुभव करते हैं। ब्रह्मचर्य एक उपहार है जिसे लातिनी कलीसिया अपने में सुरक्षित रखती है। हमें इस उपहार को पवित्रता हेतु एक साधन स्वरूप जीने की जरूरत है। यह दूसरों के संग संबंधों की स्थापना हेतु निमंत्रण देता है, जहां हम एक सच्चे सम्मानजनक संबंध और सच्ची भलाई में जीने हेतु बुलाए जाते हैं, जो यीशु ख्रिस्त में हमारे संबंध को और अधिक गहराई प्रदान करती है। मित्रों के बिना और प्रार्थना के अभाव में ब्रह्मचर्य अपने में एक असहनीय भार हो सकता है और जो पुरोहिताई की सुंदरता के साक्ष्य में विरोधाभाव उत्पन्न कर सकता है। अब हम चौथे और अंतिम निकटता की ओर आते हैं, जो ईश्वर की पवित्र प्रजा के संग हमारी निकटता है। संत पापा ईश प्रजा के संग निकटता पर जोर देते हुए हमारा ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहते हैं कि मैंने बहुत बार इस बात पर जोर दिया है कि कैसे ईश्वरीय पवित्र प्रजा से हमारा संबंध हम सबों के लिए एक कार्य मात्र नहीं बल्कि एक कृपा होती है। दूसरों को प्रेम करना हमें आध्यात्मिक ताकत की ओर खींचता है, जहां हम ईश्वर से संयुक्त होते हैं। यही कारण है कि दूसरों के संग निकट संबंध में हर पुरोहित का एक विशेष स्थान होता है। एवंजेली गाउडियम में संत पापा कहते हैं कि मैंने इस बात पर जोर दिया है कि आत्माओं को बचाने हेतु हमें चाहिए कि हम एक आध्यात्मिक रुचि जागृत करें, जिसके द्वारा हम लोगों के जीवन में उनके निकट रह सकें या स्वयं हमारे लिए एक बृहद खुशी का कारण बनती है। हमारा प्रेरितिक कार्य यीशु ख्रिस्त की लालसा और लोगों के लिए हमारा जुनून है।
Quando sostiamo davanti a Gesù crocifisso, riconosciamo tutto il suo amore che ci dà dignità.
जब हम क्रूसित यीशु ख्रिस्त के सम्मुख खड़ा होते तो हम उनके प्रेम की गहराई को देखते हैं, जो हमें ऊपर उठाता और हमें पोषित करता है। लेकिन वहीं यदि हम अपने में अंधे ना हों, तो हम यह अनुभव करने की शुरुआत करते हैं कि यीशु की निगाहें प्रेम में उद्दीप्त अपने विश्वासी भक्तों का आलिंगन हेतु आगे बढ़ती है। हम पुनः एक बार यह अनुभव करते हैं कि वे हमें साधन बनाना चाहते हैं, जिससे हम ईश प्रजा के निकट आ सकें। यीशु ख्रिस्त पुरोहितों का उपयोग करना चाहते हैं, जिससे वे अपनी पवित्र प्रजा विश्वासी भक्तों के सम्मुख आ सकें। वे हमें लोगों के बीच से चुनते हैं और हमें अपने लोगों के बीच भेजते हैं। लोगों के संग संयुक्त होने की अनुभूति के बिना हम उनके बीच अपनी गहरी पहचान को नहीं समझ सकते हैं। पुरोहितिक पहचान ईश्वर के विश्वासी भक्तों के संग अपने को संलग्न किए बिना नहीं समझी जा सकती है। संत पापा कहते हैं कि मैं इस बात से विश्वस्त हूँ कि पुरोहिताई की पहचान को नवीन बनाते हुए यह आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने को लोगों के जीवन में निकटता से सम्मिलित करें, उनकी राहों से विमुख हुए बिना उनके संग रहें।
A volte sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del Signore. Ma Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri.
कभी कभी हम उन ख्रिस्तियों के अनुरूप व्यवहार करने की परीक्षा में पड़ जाते हैं जो ईश्वर के घावों से अपने को दूर रखते हैं। हालांकि यीशु हमसे इस बात की मांग करते हैं कि हम मानवीय दुख दर्द का स्पर्श करें, दूसरों के शरीर के घावों का स्पर्श करें। वे हम सबों से यह आशा करते हैं कि हम उन व्यक्तिगत या सांप्रदायिक निशानियों को खोजना बंद करेंगे जो हमें मानवीय दुर्भाग्य के संकट से दूर रखती है। इसके बदले हमें चाहिए कि हम लोगों के जीवन की वास्तविकता में प्रवेश करते हुए उनकी संवेदनशीलता की शक्ति को जानने की कोशिश करें। जब कभी हम ऐसा करते हैं, हमारा जीवन अपने में आश्चर्यजनक रूप से कठिन हो जाता और हम इस बात को अधिक गहराई से अनुभव करते हैं कि एक प्रजा होना लोगों के जीवन का अंग होने का क्या अर्थ है। एक प्रजा होना अपने में तार्किक श्रेणी नहीं है, नहीं यह एक पौराणिक श्रेणी है। इसे समझने के लिए हमें उनके निकट जाने की आवश्यकता है, जैसे कि हम एक पौराणिक श्रेणी के निकट आते हैं। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय प्रसारण में संत पापा फ्रांसिस के 50 वर्षीय पुरोहिताई जीवन के अनुभवों की 7वीं कड़ी को सुना। हम इसे आगे जारी रखेंगे।
जग में है निर्मल सुकोमल अमल
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज दुनिया गरीबी की एक बड़ी समस्या से गुजर रही है। संत पापा फ्रांसिस ने गरीबी का बड़ा कारण युद्ध बतलाया है, जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। संत पापा ने 14 जून के ट्वीट संदेश में लिखा, युद्ध की मूर्खता के कारण कितनी अधिक गरीबी उत्पन्न हो रही है। हम जहां कहीं देखें, हम देख सकते हैं कि हिंसा कैसे उन लोगों पर हमला करती है जो रक्षाहीन एवं कमजोर हैं। गरीबों के लिए विश्व दिवस 13 नवंबर को मनाया जाएगा। संत पापा फ्रांसिस ने गरीबों के लिए 6वें विश्व दिवस हेतु अपने संदेश में क्रिश्चियनों को निमंत्रण दिया है कि वे समाज के गरीबों के प्रति अधिक संवेदनशील एवं जिम्मेदार व्यक्ति बने। उन्होंने व्यक्तिगत सहभागिता द्वारा हमारे विश्वास को कार्य रूप देने पर जोर दिया है, जिसको दूसरों पर थोपा नहीं जा सकता। गरीबों के लिए विश्व दिवस को पूजन पद्धति कैलेंडर अनुसार हर साल 33वें सामान्य रविवार को मनाया जाता है, जो इस साल 13 नवंबर को पड़ेगा। इस वर्ष के संदेश की विषय वस्तु है, ख्रिस्त आप लोगों के कारण निर्धन बन गए। संत पापा ने कुरिन्थियों को लिखे संत पौलुस के पत्र के शब्दों की याद दिलाई, ताकि उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जा सके जो जरूरतमंद भाई बहनों की मदद करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने गौर किया कि गरीबों के लिए विश्व दिवस एक चुनौती के रूप में आता है, जो हमें अपने जीवन शैली और हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की गरीबी पर चिंतन करने में मदद देता है। दुनिया की वर्तमान स्थिति पर गौर करते हुए संत पापा ने कोविड-19 की ओर संकेत दिया, जिससे दुनिया उबरने की कोशिश कर रही है, जिसमें आर्थिक सुधार के चिन्ह भी शामिल हैं, जो लाखों लोगों को उनकी नौकरियों से बेदखल कर गरीब बना दिया है। इस बीच उन्होंने दूसरी घटना पर भी खेद प्रकट किया, यूक्रेन में युद्ध, जो हमारी दुनिया में बिल्कुल अलग दृश्य लाई है। उन्होंने कहा कि यह लोगों के आत्म निर्णय के सिद्धांत के उल्लंघन में अपनी इच्छा थोपने के उद्देश्य से महाशक्ति के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के कारण अधिक जटिल बन गई है। संत पापा ने इस बात पर भी गौर किया कि बहुत अधिक गरीबी युद्ध की मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। हिंसा उन लोगों पर हमला कर रही है जो रक्षाहीन एवं असुरक्षित हैं। इस संबंध में उन्होंने हजारों लोगों के निर्वासन पर विचार किया, जिनके मूल को तोड़ने तथा उन पर एक और पहचान थोपने के लिए एवं लाखों महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों को बस सुरक्षा खोजने के लिए बम के खतरे का सामना करने हेतु मजबूर होकर पड़ोसी देशों में विस्थापित व्यक्तियों के रूप में शरण मांगना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अनेक लोगों को युद्ध क्षेत्रों में हर दिन डर के माहौल में भोजन, पानी, चिकित्सा सुविधा और मानवीय स्नेह की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इससे प्रभावित अनगिनत सामान्य लोग हैं जो जरूरतमंद लोगों की बड़ी संख्या में जुड़ चुके हैं। संत पापा ने कहा है कि गरीबों के लिए छठवें विश्व दिवस मनाया जाना हमें प्रेरित के आह्वान पर चिंतन करने हेतु प्रेरित करता है। अपनी नजरें यीशु पर टिकाए रखें, जो धनी होते हुए भी गरीब बने, ताकि उनकी गरीबी से हम धनी बन सकें। वे याद दिलाते हैं कि संत पौलुस ने जब यरूशलेम की यात्रा की, उन्होंने पेत्रुस, याकूब और योहन से मुलाकात की, जिन्होंने उनसे गरीबों को नहीं भूलने का आग्रह किया था, और भोजन की कमी की कठिनाई से जूझ रहे यरूशलेम समुदाय की मदद हेतु एक बड़ा चंदा जमा किया था। उसी तरह हर रविवार को पौत्र मिस्सा के दौरान हम भी दान करते हैं, ताकि समुदाय गरीबों की मदद कर सके। इस चीज को ख्रिस्तो ने हमेशा खुशी एवं जिम्मेदारी की भावना से किया है। एक विशेषज्ञ दल ने संघर्ष एवं युद्ध सामग्री पर एक रिपोर्ट जारी किया है, जो दर्शाता है कि शीत युद्ध के बाद पहली बार वैश्विक परमाणु शस्त्रागार बढ़ रहे हैं। यह भी चेतावनी दी गई है कि इस तरह के हथियारों के प्रयोग के खतरे इस दशक में सबसे अधिक हैं। संत पापा फ्रांसिस ने अपने भाषणों, संदेशों, उपदेशों और विश्व पत्रों में अथक रूप से परमाणु हथियार रहित विश्व का आह्वान किया है, तथा परमाणु हथियार के प्रयोग एवं उससे अपने पास रखने को अकल्पनीय तथा मानव एवं ग्रह के लिए खतरनाक बतलाया है। पर्यवेक्षक एवं विश्लेषक सहमत हैं कि यूरोप में युद्ध ने विश्व के परमाणु हथियार रखने वाले 9 राष्ट्रों में तनाव उत्पन्न कर दिया है, और वे चेतावनी दे रहे हैं कि यह एक चिंताजनक झुकाव है। सोमवार को स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान ने कहा कि जब जनवरी 2021 और जनवरी 2022 के बीच परमाणु हथियारों की संख्या में थोड़ी गिरावट आई है, यदि परमाणु शक्तियों द्वारा तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती है तो हथियारों की वैश्विक सूची जल्द ही दशकों में पहली बार बढ़ना शुरू हो सकती है। संस्थान के 2022 की वार्षिक पुस्तिका में कहा गया है कि सभी परमाणु हथियार रखने वाले देश अपने हथियार गृह को या तो बढ़ा रहे हैं या मजबूत बना रहे हैं। साथ ही अधिकांश देश परमाणु बयानबाजी को तेज कर रहे हैं और परमाणु हथियार उनकी सैन्य रणनीतियों में भूमिका निभाने लगे हैं। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान के निदेशक विल्फ्रेड वान ने संभावित रूसी सैन्य विकल्पों के परिणामों के लिए चिंता व्यक्त की है, जिसको अपने पूरे इतिहास में कभी नहीं देखा गया उन लोगों के लिए जो रूस के रास्ते में खड़े थे। संस्थान ने कहा है कि रूस में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियार गृह है, जिसकी कुल संख्या 5,977 वारहेड है, जो अमेरिका से 550 अधिक है। दोनों देशों के पास विश्व का 90% वारहेड परमाणु हथियार हैं। विश्व के अन्य हिस्सों में परमाणु भंडार एवं परीक्षणों की जांच और विश्लेषण करने के लिए ईयरबुक ने उपेक्षा नहीं की है, और भारत एवं पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष, चीन भारत सीमा पर बढ़ती शत्रुता और उत्तर कोरिया के चल रहे परमाणु प्रयासों की ओर भी इशारा किया है, जो इस समय दुनिया को एक बहुत अधिक अनिश्चित स्थिति में डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संस्थान के अध्यक्ष ने कहा, विश्व की महान शक्तियों के बीच संबंध ऐसे समय में और भी खराब हो गए हैं, जब मानवता और पृथ्वी पर कई तरह की गंभीर सामान्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका समाधान केवल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही किया जा सकता है। ब्राजील के अमेजोन में एक पत्रकार एवं एक आदिवासी गाइड की तलाश में शव पाए गए हैं, जो 8 दिनों पहले लापता हो गए थे। ब्रिटेन के पत्रकार डॉम फिलिप्स एवं आदिवासी अधिकार विशेषज्ञ ब्रूनो पेरेरा को एक सप्ताह पहले अंतिम बार देखा गया था, जो पश्चिमी अमेजोन में नाव द्वारा इताक्वे नदी पार कर रहे थे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।